नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। भारत और न्यूजीलैंड के बीच ऐतिहासिक, महत्वाकांक्षी और लाभकारी मुक्त व्यापार समझौता एफटीए पर संवाद सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने आज इसकी घोषणा की। श्री लक्सन की इस वर्ष मार्च में भारत यात्रा के दौरान इस समझौते के लिए वार्ता शुरू हुई थी। दोनों नेता इस बात पर सहमत हुए कि 9 महीने के रिकॉर्ड समय में एफटीए का संपन्न होना दोनों देशों के बीच संबंधों को और मजबूत करने की राजनीतिक इच्छा शक्ति को दर्शाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच मुक्त व्यापार समझौते ने अगले 5 वर्षों में द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने का मार्ग प्रशस्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि भारत न्यूजीलैंड साझेदारी नई ऊंचाइयों को छूने जा रही है। उन्होंने कहा कि भारत विभिन्न क्षेत्रों में न्यूजीलैंड के 20 अरब डॉलर से अधिक के निवेश का स्वागत करता है। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री श्री लक्सन ने कहा कि आज न्यूजीलैंड के लिए बड़ा दिन है। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत में बताया कि यह समझौता देश में व्यापार को बढ़ावा देकर किसानों, उद्यमियों, विद्यार्थियों और महिलाओं के लिए विभिन्न अवसर सृजित करेगा।
करीब 5,000 पेशेवर, जिनमें योग प्रशिक्षक, शेफ, आयुष क्षेत्र के विशेषज्ञ, आईटी और शिक्षा से जुड़े शिक्षक तथा नर्सें शामिल हैं, को न्यूजीलैंड की अर्थव्यवस्था में योगदान देने के लिए प्रोफेशनल वीजा मिलेगा। इसके अलावा हमने 180 क्षेत्रों को भी खोला है, जिससे पर्यटन, आईटी, टेलीकॉम और ऑडियो विजुअल जैसे क्षेत्रों में भागीदारी के नए अवसर प्राप्त होंगे।
टेलीकॉम, ऑडियो विजुअल।
विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने भारत न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौते एफटीए को दोनों देशों के बीच संबंधों को मील का पत्थर बताया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि एफटीए रिकॉर्ड समय में संपन्न हुआ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद के शीतकालीन सत्र में पारित सतत परमाणु ऊर्जा उपयोग और विकास भारत रूपांतरण विधेयक 2025 शांति विधेयक को स्वीकृति दे दी है। इसके अंतर्गत परमाणु ऊर्जा अधिनियम 1962 और नागरिक परमाणु क्षति दायित्व अधिनियम 2010 को निरस्त कर दिया गया है। राष्ट्रपति ने विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण जी रामजी विधेयक 2025 को भी मंजूरी दे दी है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत का महत्वाकांक्षी लक्ष्य प्राप्त करने में सिविल सेवकों की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। आज नई दिल्ली में भारतीय रक्षा लेखा सेवा के वर्ष 2023 और 2024 बैच के प्रशिक्षु अधिकारियों से बातचीत में उपराष्ट्रपति ने सत्यनिष्ठा, पारदर्शिता, सतर्कता और उत्तरदायित्व के उच्चतम मानक बनाए रखने की आवश्यकता पर बल दिया। पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने स्पष्ट किया है कि सरकार की अरावली क्षेत्र में शहरीकरण की योजना नहीं है और सरकार का एकमात्र तथा सर्वोपरि उद्देश्य अरावली पर्वतमाला को संरक्षित करना है। आज नई दिल्ली में एक समाचार एजेंसी से बातचीत में श्री यादव ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय ने अरावली के संरक्षित क्षेत्रों को परिभाषित कर दिया है। उन्होंने कहा कि इस परिभाषा के आधार पर राज्यों को कड़े नियम बनाने होंगे। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज पूर्वोत्तर क्षेत्र में अवसंरचना, रसद और संपर्क सुविधा के बारे में उच्च स्तरीय कार्यबल की बैठक की। श्री सिंधिया ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि बैठक की अध्यक्षता त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने की। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक्ट ईस्ट, एक्ट फास्ट एंड एक्ट फर्स्ट की परिकल्पना के अंतर्गत अष्टलक्ष्मी राज्यों को दक्षिण पूर्व एशिया के लिए देश के प्रवेश द्वार के रूप में विकसित करने की महत्वपूर्ण रूपरेखा तैयार की गई। बांग्लादेश में अल्पसंख्यक संगठनों के नेताओं ने मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार पर धार्मिक और जातीय अल्पसंख्यकों को निशाना बनाकर जारी हिंसा, हत्याओं और उत्पीड़न को रोकने में विफल रहने का आरोप लगाया है। तोशाखाना से जुड़े एक दूसरे मामले में पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के संस्थापक इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी को 17 साल की कैद की सजा सुनाए जाने के अदालती फैसले के विरोध में पार्टी कार्यकर्ता पूरे देश में रैलियां निकाल रहे हैं। इस दौरान सांसद शंदाना गुलजार ने कहा कि इमरान खान आने वाली पीढ़ियों और नागरिकों के अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।